الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورۃ النمل ہم اس کلاس میں پڑھ رہے ہیں معروف قرآن کی جلد نمبر 6 سے. خلاصہ تفسیر ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ کے مکمل کر لی تھی ان آیات کی، یعنی 54 سے لے کر کے 59 تک کی. تو اس کے معروف و مسائل ہم ابھی پڑھنے شروع کر رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ تھا ان آیات کے اندر. تو معروف و مسائل میں حضرت لکھتے ہیں مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ کہ اس قصے کے متعلق قرآن میں متعدد جگہ خصوصاً سورہ آراف میں ضروری مضامین بیان ہو چکے ہیں، وہاں دیکھ لیے جائیں. ٹھیک ہے، سورہ آراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان تمام انبیاء کرام جن کے قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور دیگر، تو ان کا کافی واقعہ جو ہے نا تفصیل کے ساتھ وہاں پر ڈسکس ہو چکا ہے، اسی کو حضرت ریفر کر رہے ہیں. سورہ اعراف کی ہماری ایک کلاس میں تفسیر چل بھی رہی ہوتی ہے، تو اس کی ساری ریکارڈنگ الحمدللہ اویلیبل ہیں. اگر کسی کو دلچسپی ہو تو سورہ اعراف کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمارے ویب سائٹ سے لی جا سکتی ہے، وہاں پہ اویلیبل ہیں. اور سبحان اللہ، اس میں کیا کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ چھوڑا ہے. تو آگے فرماتے ہیں قل الحمدللہ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے کچھ حالات اور ان پر عذاب آنے کے واقعات کا ذکر کرنے کے بعد یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی امت کو دنیا کے عذاب عام سے مامون کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے معروف و مسائل میں حضرت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کوئی واقعہ وغیرہ مزید تفصیل بیان نہیں کری ہے، بس پیچھے جو کافی ساری تفصیل ہو گئی تھی سورہ اعراف کے اندر اور کافی سارے صفوں کے اندر حضرت نے وہ بیان کیا ہے، وہ معروف القرآن کی جلد نمبر 3 کے بالکل آخر کے صفحات ہیں. جلد نمبر 3 معروف القرآن، بالکل آخر کے صفحات، جن کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تفصیلی واقعہ ہے. اور پھر کافی کچھ تو ہم نے خلاصہ تفسیر کے اندر ذرا ریپیٹ بھی کر لیا تھا، تو اس وجہ سے اب آگے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ بالکل یعنی 59 آیت ہے نا اس سیٹ کی، تو اس میں فرمایا قل الحمدللہ. ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ الحمدللہ کہیے. کیوں کہیے، کیا کانٹیکسٹ ہے یہاں پر، کیا ریلیونس ہے اس وقت الحمدللہ کہلوانے کی، کہ یہ جو عذاب ان قوموں کے اوپر آئے تھے اس طرح کا عذاب آپ کی قوم کے اوپر نہیں آیا. کیا مطلب آپ کی قوم، کیونکہ نبی کی جو قوم ہوتی ہے، نبی کی جو امت ہوتی ہے، وہ صرف اس کے ماننے والے نہیں ہوتے بلکہ جو اس کو نہیں مانتے وہ بھی اس کی امت میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی اس کی امت میں شامل ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو امت اجابت کہتے ہیں، یعنی جنہوں نے پازیٹیولی ریسپونس کیا ہوتا ہے، جواب دیا ہوتا ہے پازیٹیولی. ٹھیک ہے نا، اس کو امت اجابت کہتے ہیں، اور جو کہ نیگیٹیولی ریسپونڈ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو امت دعوت کہتے ہیں. یعنی ان کو جو ہے وہ نبی دعوت دیتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان کی موت آ جاتی ہے، یا نبی کی موت آ جاتی ہے یا اس امت کے فرد کی موت آ جاتی ہے کہ جس نے کہ دعوت قبول نہیں کری. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جب امت دعوت کے اوپر عذاب آ جاتا ہے نا، تو وہی اس کی موت ہو جا کا سبب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عام عذاب کے امت دعوت ساری کی ساری ایک ساتھ ہلاک کر دی گئی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اوپر ایسے عذاب نہیں آئے گا، نہ پہلے آیا نہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ये फैसला है, तो अब हम इसके ऊपर इंशाल्लाह कहें या इंशाल्लाह ना कहें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बात हमें पता है कि ये ऐसा ही है। ठीक है, इंशाल्लाह का मतलब तो ये होता है कि अगर अल्लाह ने चाहा, ठीक है ना। तो माशाल्लाह जब इंशाल्लाह कहने की पहले तो आदत ही नहीं थी हम लोगों को, है ना, लेकिन जब आदत पड़ गई तो अब हम हर जगह इंशाल्लाह बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना जी, इंशाल्लाह। ठीक है, अब हर जगह ही इंशाल्लाह, हत्ता के मैं इंशाल्लाह जन्नत में गया, तो भाई क्या मतलब, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है जन्नत में ना जाने का इंशाल्लाह? ठीक है, नहीं, यहाँ पर इंशाल्लाह का मतलब ये नहीं, मैं अल्लाह की रहमत से जरूर जन्नत में जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह की रहमत से मैं जरूर जन्नत में जाऊंगा, मैं अगर जन्नत में गया नहीं भाई। ठीक है, जहन्नुम का हम एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, इंशाल्लाह कहने के भी मौके होते हैं, खुसूसन दफ्तरों के अंदर जब आपको कोई काम असाइन किया जा रहा हो ना, कि जी आपने जो है वो ये प्रपोजल सबमिट करना है, ठीक है, और ये जो है ना इस RFP का आपको जवाब देना है, तो उसके ऊपर जो है ना वो खुसूसन ऐसे मौके के ऊपर जरा संभल करके इंशाल्लाह कहना चाहिए कि जी हाँ मैं 2 दिन में इंशाल्लाह 2 दिन में मैं सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो वहां पे ये नहीं कह रहे कि नहीं बोले इंशाल्लाह, बोले जरूर से, लेकिन जरा संभल करके, जरा मौका मिले देख करके, और किस बंदे से बात कर रहे हैं ये देख करके इंशाल्लाह बोले, क्योंकि दफ्तरों के अंदर इंशाल्लाह का मतलब आजकल जो है ना वो कंफर्म ये ले लिया गया है, कि इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने नहीं करना है, जब ही कह रहा है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो कर दूंगा, नहीं चाहा तो मेरा क्या कसूर है इसके अंदर। ठीक है, तो वो वाला इंशाल्लाह नहीं बोलना चाहिए ना, उसको देख करके बोलना चाहिए शायद। तो उम्मत, आपकी उम्मत को दुनिया के अजाब आम से मामून कर दिया गया है, यानी अमन में उनको डाल दिया गया है, और अंबियाए साबिकीन और अल्लाह के बरगुजीदा बंदों पर सलाम भेजिए। जमहूर मुफस्सरीन ने इसी को इख्तियार किया है, और बाज ने इसका मुखातब भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को करार दिया है। ठीक है, कि यहाँ पर जो है ना जिस बरगुजीदा बंदे की बात हो रही है वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, क्योंकि उन्हीं का किस्सा चल रहा था, वरना जमहूर मुफस्सरीन ने कि भाई सारे अल्लाह के जो अंबियाए साबिकीन है जिनमें बरगुजीदा बंदे दूसरे औलिया भी शामिल है और अंबिया भी शामिल है, उन सब के ऊपर आप सलाम भेजिए। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की जो उम्मत दावत होती है उसके ऊपर अजाब की शक्लें जो है ना वो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी रखती हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के ऊपर अजाब की शक्ल से। ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी, अगरचे कि 100% सिमिलैरिटी नहीं नहीं है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ भी इस किस्म का हुआ कि जी सारे के सारे एक बस्ती के लोग जो हैं वो बंदर बना दिए गए, सारे के सारे एक बस्ती के लोग जो है वो खंजीर बना दिए गए। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी बस्ती जो है ना वो, पूरी की पूरी उम्मत जो नहीं मानने वाली है उसका तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पूरी की पूरी बस्ती वाला भी मामला नहीं हुआ, बल्कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम कौम के ऊपर अजाब कैसे आया कि उनके दुश्मनों को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया जो कि इंसान ही थे। ठीक है ना, जैसे वो क्या नाम था उसका बड़ा मशहूर, जो वो एक बादशाह था, नाम इस वक्त मेरे जहन से निकल गया, बख्त बुख्त नसर या बख्त नसर बुख्त नसर जो भी उसका नाम था, तो उसने जो है वो हमला कर करके जो है ना वो सारा का सारा बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया बनी इसराइल के, और बहुत सारों को कत्ल कर दिया, और बहुत सारों को वो जो है वो कैदी बना करके उनकी सारी दौलत वौलत लूट करके जो है ना वो अपने मुल्क में ले गया। तो हमारी दौलत भी लूट करके जो है वो अंग्रेज और फ्रांसीसी और जो क्या कहते हैं उनको, जो डच हैं, है ना, कहीं पे फ्रांस ने आकर के हुकूमत मचा ली अपनी नॉर्दर्न अफ्रीका में, ब्रिटिश ने आकर के जो है वो आपके सब कॉन्टिनेंट के अंदर और बहुत सारे एशिया के कंट्रीज के अंदर ब्रिटिश ने आकर के जो है वो हुकूमत अपनी कायम कर ली, और लूट खसूट करके सारे आपके हीरे चांदी और जो जो भी था ना वो सारा का सारा ले गए। ठीक है, तो ये है हमारे अदाब की शक्ल, और आज तक ये अदाब हमारे ऊपर मुसल्लत ही है, क्योंकि हमने अभी तक तौबा करी ही नहीं है, तो कहाँ से जाएगा भाई ये। ठीक है, तो फरमाया कि और अम्बिया साबिकीन और अल्लाह के बरगुजीदा बंदों पर सलाम भेजिए। जमहूर मुफस्सरीन ने इसी को इख्तियार किया, बाद में इसके मुताबिक चले। इस आयत में अल्लज़ी नस्तफा के अल्फाज से जाहिर ये है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम मुराद हैं, जैसे कि एक दूसरी आयत में है वह सलामुन अलल मुरसलीन। मुरसल का मतलब क्या होता है? रसूल, या रसूल बमाने मुरसल। ठीक है, और हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत में है कि इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का। ठीक है ना, यानी एक रिवायत, यानी इब्न अब्बास ने नबी अलैहिस्सलाम से ही इसको रिवायत किया होगा ना मोस्ट लाइकली। मतलब मुझे नहीं पता कि ये मरफू हदीस है कि ये मौकूफ हदीस है, लेकिन इब्न अब्बास की हदीस का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो मुफस्सिर कुरान नबी अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थे वो। तो उन्होंने फरमाया कि यहाँ पर सहाबा किराम मुराद, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ने भी इसी को इख्तियार किया है, यानी उन्होंने भी इसी कॉल को उनको प्रेफर किया। तो कहते हैं कि अगर आयत में अल्लदीन अस्तफा से मुराद सहाबे कराम लिए जाएं, जैसा कि इब्ने अब्बास की रिवायत में है, तो इस आयत से गैर अंबिया पर सलाम भेजने के लिए उन्हें अलैहिस सलाम कहने का जवाज भी साबित होता है। ठीक है, जैसे किसी सहाबी के लिए जो कि नबी नहीं है, उनको भी उनके नाम के साथ अलैहिस सलाम कहने की इजाजत साबित होती है, वरना तो सहाबी के लिए जो जो मुत्तफिकुन अलैह, हर एक का कंसेंसस है जिसके ऊपर, वो है रजी अल्लाह ताला, ठीक है, कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया। इस मसले की पूरी तहकीक सूरह अहज़ाब में आयत सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा की तफसीर में आएगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, सूरह अहज़ाब जो है वो 7वीं जिल्द के अंदर पड़ती है मारुफुल कुरान की, तो उसमें जब उसमें यही वाली आयत भी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल लजीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। लेकिन सूरह अहज़ाब जो है ना, ये ऐसी सूरत है कि उसकी तफसीर में क्या क्या चीजें नहीं आती, यानी हमारे दौर से रिलेटेड अगर इस फकीर बेतदबीर से पूछा जाए ना कि हमारे दौर में जो सबसे रेलेवेंट सूरत बनती है ना, वो मतलब मैं तो अपनी कम अकली और कम इल्मी दोनों हर चीज को साथ मिला करके अपने तौर पर ये कहूँ सूरह आज़ाब, ठीक है, और सूरह आज़ाब पर्दे के अहकाम, राइट, और गैर मुस्लिम कौमों का इज्तिमा करके मुसलमानों के ऊपर हमला करना, ठीक है, ये सारे वाक़ जो है सूरह अहज़ाब के अंदर है। इसी वजह से बहुत बड़ी सूरत ये नहीं है, लेकिन इसकी तफसीर बहुत जबरदस्त और बहुत तफसीली है, ठीक है, बड़े जबरदस्त जबरदस्त इसके अंदर मसाइल जो है ना वो मिलते हैं। सूरह आराफ जैसे है वो तो बहुत बड़ी सूरत है ना, लेकिन सूरह अहज़ाब इतनी बड़ी सूरत नहीं है। तो अगर किसी को तौफीक हो और किसी के दिल में अल्लाह ताला ये शौक पैदा करें, तो उसको सूरह अहज़ाब की तफसीर जो है ना वो पढ़नी चाहिए, मारुफ कुरान में बेहतरीन तफसीर उसकी मौजूद है। आगे एक शरी मसला लिखते हैं कि इस आयत से खुतबे के आदाब भी साबित हुए कि वो अल्लाह ताला की हम्द और अंबिया अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम से शुरू होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम के तमाम खुतबात में यही मामूल रहा है, बल्कि हर अहम काम के शुरू में अल्लाह ताला की हम्द और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम मसनून व मुस्तहब है। ठीक है, यानी सहाबा इकराम की सुन्नत रही है, और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सहाबा इकराम की सुन्नत, और सवाब का काम है। मुस्तहब का मतलब कि करेंगे तो सवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये एक और फिकी मसला जो है वो इन आयात से हजरत ने डिराइव किया। किसी को कोई सवाल है अगर तो आप पूछ लीजिए, वरना आगे की आयात पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चले, हाउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़ अस्समावाति वल अर्ध, भला किसने, तो क्वेश्चन के लिए ना, क्या मन खलक़ अस्समावाति वल अर्ध, किसने तख्लीक किया आसमानों को और जमीन को, व अनज़ला लकुम मिनस समाई मा, और नाजिल किया तुम्हारे लिए आसमान से पानी। समावात को क्रिएट किया और नाजिल किया, किया नाजिल कहाँ से किया, आसमान से, ठीक है, क्योंकि पानी जो आता है ये आपके पहले आसमान से आ जाता है, जो आसमान दुनिया कहलाता है, जिसको हम एटमोस्फेयर भी कहते हैं। फअम्बतना बिही हदाइक ज़ात बहजा, फिर उसके बाद उगाए उससे, यानी उस पानी को अल्लाह ताला ने यूज करते हुए उगाए हदाइक, हदीकतुन की जमा हदाइक यानी बागात, जात बहजा रौनक वाले बागात, रौनक वाले बागात, ठीक है ना, यानी बहजा का मतलब रौनक, यानी ऐसे माशाल्लाह ग्लोइंग कलर्स होते हैं उसके, जो ग्रीन कलर, जो स्पेशली जब स्प्रिंग का जमाना होता है ना, उसके अंदर फ्रेश फ्रेश पत्ते निकले होते हैं, तो उनका जो सब्ज रंग होता है ऐसा आंखों को भाता है, और ऐसा यानी ग्लो कर रहे होते हैं वो सारी की सारी चीजें, फूल भी और पत्तियां भी और हर चीज इवन। तो ऐसे फिर उसने वो गाय पानी को इस्तेमाल करते हुए, मा कान लकुम अंतुम मितु शजरहा, ये तो तुम्हारे लिए था ही नहीं, तुम्हारे लिए यानी मुमकिन ही नहीं था कि तुम उनके दरख्त उगाते। तुम भी तो तुम उनको नबाता यम बतू ना, वो यानी पैदा करना, ठीक है, नबातात से तो तुम उगाते, शजरहा उनके दरख्त, ठीक है, नहीं तुम्हारे क्या बस में था कि तुम जो है वो दरख्त उगाते, यानी दिस वॉज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि तुम ये काम कर सकते थे। अल्लाह, क्या कोई माबूद है, हो सकता है क्या कोई माबूद है, इबादत के लायक है अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के साथ मिक्स करके तुम किसी को की इबादत कर सकते हो कि अल्लाह की भी मानूंगा और अल्लाह के खिलाफ उसकी भी मानूंगा, यानी वो से मुराद कोई भी जो कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ तुम्हें हुक्म दे रहा है उसका भी हुक्म मानूंगा और अल्लाह की भी मानूंगा, राइट। जैसे कि आजकल मुसलमान का आमतौर पर यही हाल है कि नेकी भी कर रहा होता है, गुनाह भी कर रहा होता है, यानी अल्लाह की भी मान रहा होता है, नमाजे वमाजे भी पढ़ लेता है, तवाफ शवाफ भी कर लेता है और उमरे शुमरे भी कर लेता है, लेकिन साथ साथ जो है ना वो झूठ शूट भी बोल लेता है और धोखा शोका भी दे लेता है ना, तो ये सारे सारे अपने चल रहे होते हैं मामला। नहीं, अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी इलाह है, माबूद है, बल हम कौमी या दिलून, बल्कि वो एक कौम है, या अदलून, जो के अदल के रास्ते से जो है ना वो मुड़ते हैं, यानी सीधे रास्ते से, स्ट्रेट पाथ से, सिराते मुस्तकीम के रास्ते से जो है ना वो हटते हैं, मुड़ते हैं। अमन जाल अर्द करारन, भला किसने बना दिया जमीन को करारन, ठहरने के लायक जगह, ठीक है, यानी पता है ना अभी जो जलजले आते हैं ये तो 7.8 रिक्टर स्केल के ऊपर आया है ना, तो ये तो एक बड़ा जलजला था, लेकिन आपकी क्रस्ट के अंदर छोटे जलजले तो मुस्तकिल आते रहते हैं, लेकिन ऊपर से हमें पता चलता है, हम तो बड़े सुकून के साथ जो है ना वो बगैर हिले जुले जो है ना वो माशाल्लाह चल भी रहे होते हैं, गाड़ियां भी चला रहे होते हैं और सब काम कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता नीचे क्या हो रहा है, बड़े सुकून से करार पा करके। एक तो ये हो गया कि जमीन के अंदर जलजले आते रहते हैं मुस्तकिल, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। दूसरा ये कि जमीन जो है वो मुस्तकिल रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड, लेकिन हमें अंदाजा ही कोई नहीं होता, ना सिर्फ ये कि उसके घूमने का अंदाजा नहीं होता, अल्लाह ताला ने इतनी उसकी उसकी उसका साइज बना दिया है, बल्कि ये कि वो अपने एक्सिस के ऊपर जो रोटेट कर रही होती है तो उसके अंदर कोई ऐसा, यानी अगर उसके अंदर थोड़ी सी बबलिंग होती है, हमारे हजरत क्योंकि इंजीनियर भी हैं तो उन्होंने एक दफा अपने बयान में इस बात को समझाया था कि जी जो आपकी यानी गाड़ी के टायर्स होते हैं ना, उन टायर्स की बैलेंसिंग के अंदर अगर जरा सा भी ऊंच नीच हो जाए ना तो गाड़ी बबलिंग करनी शुरू हो जाती है ना, राइट, वो उसका स्टेयरिंग जो है वो ऑफ होना शुरू हो जाता है और उछलनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, तो इतनी बड़ी गाड़ी में आप बैठे हुए लेकिन टायर की जरा सी बैलेंसिंग आउट होने की वजह से, अलाइनमेंट आउट होने की वजह से फौरन पता चल जाता है। उसी तरीके से आपकी जो इतनी बड़ी जमीन है उसमें भी अगर एक्सेस के कुछ ना कुछ अगर बैलेंसिंग आउट हो जाए कि इधर का वजन जो है वो उधर के मुकाबले में कम हो जाए, नॉर्थ की साइड का वजन साउथ की साइड के वजन से, जो कि अल्लाह ताला ने ऊपर से वजन के तौर पर जो है वो मेखें गाड़ी हुई हैं इसके अंदर, पहाड़ जो गाड़े हुए हैं और वो पूरे ऑल द वे नीचे जाते हैं क्रस्ट के, ठीक है, तो क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे जो लेयर्स हैं उनमें अगर कुछ बैलेंसिंग ऑफ हो जाए, इधर की उधर बढ़ जाए उधर की कम हो जाए, तो इस ये जो चलने वाली ये गाड़ी है जिसको हम प्लैनेट अर्थ कहते हैं, तो इसमें हमारा क्या हशर हो, क्या हशर हो हमारा ना, हम तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते ना। तो अम मन जाल अर्द करारन व जाला खिलालहा अनहारन, और किसने बनाई उसके बीच में, उसके खिलाल में, उसके जो बीच के जो स्पेसेस थे, अनहार, नहरें बनाई, यानी पानी गुजरने की जगह, नहर का मतलब सिर्फ वो नहीं जो कि आपके पंजाब के अंदर जो है वो नहरी निजाम, बल्कि नहर का मतलब पानी गुजर की गुजरगाहें, ओशंस, सीज, बाकी लेक्स इतनी बड़ी बड़ी सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। वजाला लहा, और रखे उसके लिए रवासिया, ठीक है, यानी किले, वजाला बैन अल बहरीन हाजिजा, और बना दिया बहरीन के दरमियान, यानी दो बहर, दो समंदरों के दरमियान हाजिज, यानी एक एक ऐसी रुकावट, एक ऐसा पर्दा, ठीक है, जो कि आजकल माशाल्लाह, पहले तो हम कभी कभी कहीं कहीं कुछ देखा करते थे, लेकिन अब तो हर जगह ही माशाल्लाह आपको इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। कितनी सारी जगह हैं ओशंस के अंदर कि जहां पे इधर का पानी उधर नहीं जा सकता, उधर का पानी इधर नहीं जा सकता, हालांकि दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो मिक्सचर नहीं होता वो इन दोनों पानियों का, वरना आप जो है वो पानी के अंदर जो है वो रू अफजा या नौरस के शरबत डालें तो रू अफजा और नौरस आपस में गटमट हो जाते हैं ना, आप रू अफजा और नौरस नौरस को अलग तो नहीं रख सकते कि आपने एक ही ग्लास के अंदर पहले वो डाला फिर उसके बाद ये डाला और दोनों जो है वो अलग अलग है, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन समंदर के पानी के अंदर इधर का पानी अलग, इधर का पानी अलग, वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। और वो क्यों नहीं मिक्स हो रहा है, जाहिर है जब आप साइंटिफिक डिटेल्स के अंदर जाते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाते हैं, तो पता चलता है कि एक फोर्स है वहां पर जो कि दूसरे को धक्का दे रही होती है, उस तरफ के मॉलिक्यूल्स को इधर के मॉलिक्यूल्स पुश अवे कर रहे होते हैं। जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को आप दोनों को जोड़ने की कोशिश करें ना किसी मैग्नेट के, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं, ये एक फोर्स क्रिएट होती है जो कि एक दूसरे को पुश कर रही होती है ना, सिमिलर पोल्स। उसी तरह अल्लाह ताला ने उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ऐसी एक फोर्स रखी हुई है, दोनों को पुश कर रही होती है, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने पता नहीं बिजली शिजली बनाने के भी कोई तरीके निकाल लिए कि वहां पे वहां जितनी एनर्जी है, ओशंस के मॉलिक्यूल्स है ना अनलिमिटेड, उसकी कोई यानी हद ही कोई नहीं, कितने मॉलिक्यूल्स होते होंगे वहां पर, कितने बड़े ओशन के पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुश अवे कर रहे हैं। तो वहां पर अगर ये उस एनर्जी को जो है ना वो कैप्चर करना शुरू कर दें, तो इतनी एनर्जी के मतलब आप पाकिस्तान में बिजली जानी खत्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी तो दूसरे मसलों की वजह से बिजली जाती है ना, वरना बिजली की कमी को थोड़ी होती है। बहरहाल तो सोलर एनर्जी है, उसी तरह ये पानी की एनर्जी, भाई ये डैम शैम बनाने की भी उसके बाद जरूरत नहीं रहेगी। एनीवे तो वजाला बैन अल बहरीन हाजिजा व इलाहुम अ इलाहुम मअ अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी है जिसकी तुम इबादत करो, यानी जिसकी तुम जो है वो अल्लाह का हुक्म छोड़ करके जिसकी तुम अतात करना शुरू करो, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अतात करना शुरू करो, कोई ऐसा भी है? रसूल की अतात ये अल्लाह को छोड़ के अतात के थोड़ी होती है, रसूल की अतात जो औलियाए कराम होते हैं, अंबिया जो 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 उलमाए कराम होते हैं, उनकी जो अतात हम करते हैं, तो हम अल्लाह की अतात को इग्नोर करके उनके अतात को थोड़ी कर रहे होते हैं, नहीं। लेकिन किसी झूठे मक्कार काफिर फासिक या किसी दुनिया परस्त, उसकी जो हम अतात कर रहे होते हैं, जो कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हमें हुक्म दे रहा होता है, सूद लो तब तुम्हारा मुल्क चलेगा, सूद दो तब तुम्हारा मुल्क चलेगा, तो सूद वाली जो अतात है जो आप IMF की कर रहे होते हैं या जो भी आपके फ्रा पता नहीं कौन कौन से फोरम्स हैं दुनिया जहान के, है ना, तो ये अल्लाह को छोड़ करके आप अतात कर रहे हैं किसी की, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएं चाहे अपने घर के लेवल पे चले जाएं कि बेगम साहिबा कह रही हैं जी आप जो है ना वो तो इतने इंतहाई बोर इंसान है, चले हम चलते हैं फिल्म देखने के लिए, ठीक है ना। तो ये बेगम साहब की जो अतात है फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं बेगम साहब के साथ जरा अच्छा टाइम पास करने के लिए, तो ये अल्लाह को छोड़ करके बेगम साहब की अतात हो रही है, तो बेगम साहब जो है वो इलाह बन गई मअल्लाह, ऐसे मौके पर बेगम साहब मअल्लाह एक इलाह बन गई उस शोहर की। उसी तरह शोहर की अतात कर रही है बीवी, जब शोहर सो कह रहे हैं ओए खबरदार तुमने पर्दा किया है? तुम जो है वो कोई हम कोई शटल कॉक वाले जमाने में रहते हैं, कोई हम कोई 1400 साल पुराने जमाने में रहते हैं, कोई उतारो इस पर्दे को, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारा पर्दा करना। तो अगर बीवी ने उसकी बात मान ली तो शौहर उसका इलाहुम मअल्लाह बन गया, है ना। नमाजें भी पढ़ती होगी पाकिस्तान के अंदर उमूमी तौर पर, इंडिया पाकिस्तान की दीनदार औरतें नमाजें खूब पढ़ती हैं माशाल्लाह, तस्बीह भी खूब पढ़ती हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अगर शौहर की बात मान ली इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है जो तुमने बना लिया इसको, कहां से बना लिया तुमने इसको माबूद, अल्लाह के साथ बना लिया, अल्लाह का हुक्म तोड़ दिया इसके हुक्म की वजह से, अम्मी हुजूर का की हुक्म की वजह से अल्लाह का हुक्म तोड़ दिया, अब्बू हुजूर की वजह से तुमने अल्लाह का हुक्म तोड़ दिया, राइट? अल्लाह क्या है कोई अल्लाह के अलावा? इलाह जो तुम ये कर रहे हो, क्या तुम बच जाओगे? अदाब खत्म नहीं हो गया, बस उसकी शक्ल चेंज हुई है। पिछली कौमों के ऊपर अजाब आता था, दूसरी शक्ल में आता था, इस कौम पर भी अजाब आता है लेकिन शक्ल चेंज हो गई है खाली। कलेक्टिवली एक साथ सबको नहीं मार दिया जाता, लेकिन अजाब तो आ रहा है ना, अजाब तो आ रहा है ना, नहीं खत्म को थोड़ी हो गया अजाब आना कि नहीं जी मरने के बाद पता नहीं शायद आ जाए, मरने के बाद अल्लाह ताला रहीम है करीम है माफ कर देंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। नहीं, दुनिया में अजाब आ रहा है भाई, दुनिया के अंदर बच को थोड़ी रहे हो। बल अक्सरहुम ला यालम, लेकिन इनमें से जो मेजोरिटी है ना, अवामुन्नास की मेजोरिटी, डेमोक्रेसी वाले जो लोग होते हैं ना, डेमोक्रेसी अवाम की मेजोरिटी, नहीं हम आई लगे हुए हैं अवाम की मेजोरिटी की हुकूमत लेकर के आएंगे, हमारे हालात बदल जाएंगे, हम सब ठीक हो जाएगा, लगे हुए कोई कोई उधर की हुकूमत लाने की कोशिश कर रहा होता है, कोई इधर की हुकूमत लाने की कोशिश कर रहा होता है, जाहिलों की हुकूमत है, अवाम भी जाहिल और उनके नुमाइंदे भी जाहिल। ला यालम, ये जाहिल है, ये नहीं, इनके पास इल्म नहीं है, ठीक है ना? तो इनसे तुम कौन सी ओपिनियंस ले रहे हो, इनसे तुम कौन सी गाइडेंस ले रहे हो, ये तो खुद जाहिल है। ला यालमून, इनको क्या पता? यालमून वाहिरम मिन अल हयात दुनिया, ये तो दुनिया की जिंदगी के थोड़ी सी चीजों को जो है ना वो जाते हैं और आखिरत से तुम्हें गाफिल है, ठीक है? तो ये तो जाहिल जाहिल लोग है ना। आप जो है वो इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं, यही हमें कामयाब कर देंगे, यही हमें कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। नहीं, क्या कर देंगे? अगर इन्होंने कामयाब कर भी दिया तो कौन सी कामयाबी होगी? आपका मुल्क जो है वो दुबई बन जाएगा, आपका मुल्क जो है वो पता नहीं सिंगापुर बन जाएगा, आपका मुल्क जो है वो स्विट्जरलैंड बन जाएगा, स्वीडन बन जाएगा। तो क्या ये कामयाबी है आपके लिए, राइट? अगर कोई वाकई आ गया पाकिस्तान के अंदर जिसने इकोनॉमी को जो है वो अच्छा कर दिया, तो क्या होगा भाई, राइट? स्वीडन से ज्यादा अच्छा बना देगा वो आपके आपके आपकी इकोनॉमी को, सिंगापुर से ज्यादा अच्छा बना देगा। आप जाना चाहते हैं, आप सिंगापुर जाओ, चले जाओ यार, पाकिस्तान छोड़ के सिंगापुर चले जाओ ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यहाँ पे बैठ के? नहीं, हमें तो स्वीडन नहीं चाहिए, हमें सिंगापुर नहीं चाहिए, हमें जो है वो कोई नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हम यहाँ बैठ के कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, हम कोई सिंगापुर की वो कोई इकोनॉमिक जर्नल को थोड़ी पढ़ रहे हैं बैठ करके। अगर हमें सिंगापुर बनाना होता तो हम सिंगापुर का इकोनॉमिक जर्नल पढ़ रहे होते, उनके जो है वो फाइनेंस स्पेशलिस्ट जो है वो उनसे जाकर के जो है वो अभी बैठ करके तालीम हासिल कर रहे होते हैं। हम तो अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो हमें तो अल्लाह की रजा चाहिए, हमें तो अपने कब्र को जो है वो जन्नत का बाग बनाना है, हमें अपने कब्र को जन्नत का बाग बनाना है। हमने हमने अपने मुल्क को जो है वो कब्र को कॉम्प्रोमाइज करके हमने अपने मुल्क को दुबई नहीं बनाना, हमने अपने मुल्क को जो है वो स्विट्जरलैंड और स्वीडन नहीं बनाना, राइट? इस बात को तो पहले सेट करें ना, फिर उसके बाद आगे बात होगी। यहीं पर हम अभी तक इसी के बारे में क्लियर नहीं है कि हमें बनाना क्या है, ठीक है? बल अक्सर हूं ना यालमून, ठीक है ना? इल्म ना यालमून का मतलब भाई इल्म, इस बात का इल्म तो हासिल करो ना, करना क्या है, करना क्या चाहते हो, ये तो कम से कम अपने जहन में क्लियर करो, इसका तो इल्म क्लियर करो अपने अंदर। अमल तो बाद में करोगे, इल्म तो पहले हासिल करो। मुफ्ती बनने को कोई नहीं कह रहा है इधर, इस वाले इल्म को कि भाई कामयाबी किस चीज के अंदर है और किस चीज के अंदर नाकामी है, यही इल्म अभी तक हमारे पास हासिल नहीं हो। कौन सी तहज्जुदें पढ़ रहे हो, कौन से जो है वो तवाफ के चक्कर काट रहे हो, हर वक्त थोड़े दिन के बाद पहुंच जाते हो चक्कर काटने के लिए, इल्म ही सही नहीं है, कौन सा अमल कर रहे हैं, ठीक है ना? अम मैं युजीबुल मुज़्तर इज़ा दुआहु, क्या कौन जो कि जवाब देता है, भला कौन जवाब देता है? मुज़्तर, मुज़्तर जो कि इज़्तिरार के अंदर बंदा होता है उसको कौन जवाब देता है? इज़ा दुआहु, जब वो उसको पुकारता है, वही ऊपर से चल रहा है। अम मन खलक समावाती वल अर्द, अम मन जअल अल अर्द करारन, अम मन जअल खिलालहा अनहारन, अम मन जअल लहा रवासिया वजअल बैन अल बहरैन हाजिजा। अल्लाह, ठीक है ना, यहाँ पर अल्लाह, अम मन युजीबुल मुज़्तर इज़ा दुआहु व यक्शिफु सूअ, और बुराई को जो है वो दूर करने वाला कौन है भला? वयजअलुकुम खुलफा अल अर्द, और जो कि तुमको खलीफा बनाता है जमीन के ऊपर, जमीन में अपना खलीफा बनाता है, कौन है? अलाहुम माल्ला, क्या कोई और माबूद है अल्लाह ताला के अलावा? है ना, तुम्हारा शौहर जो कि तुम्हें हराम के ऊपर मायल कर देता है, तुम्हारी बीवी तुम्हें हराम पे मायल कर देती है, तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप तुम्हें हराम के ऊपर मायल कर देता है, तो वो तुम्हारे लिए जो है वो तुम्हारी मुसीबत को दूर कर सकता है? वो तुम्हारी दुआ का जवाब दे सकता है? और वो तुम्हें जमीन के अंदर खलीफा बना सकता है? माँ बाप की इज्जत हमारे दीन का बुनियादी जुज है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अल्लाह, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अल्लाह कमांड्स, अल्लाह शरीयत, दीन, राइट? वो तो कुछ नहीं कर सकते, माँ बाप तो आपको जमीन में खलीफा नहीं बना सकते, माँ बाप तो आपकी मुसीबत को दूर नहीं कर सकते ना, राइट? अल्लाह है ना जिसने करना है, और अल्लाह के कलाम के साथ तुम्हारा ये रवैया है, अल्लाह के कलाम के साथ, अल्लाह के दीन के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ तुम्हारा ये रवैया है, और इस मुगालते के अंदर तुम मुब्तला हो कि तुम्हारा अल्लाह के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता बना हुआ है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, अल्लाह के साथ तो मेरा बड़ा जबरदस्त रिश्ता बना हुआ है। कहाँ से रिश्ता बन गया तुम्हारा? तुम्हारा रिश्ता अल्लाह के साथ ही बना हुआ, शैतान ने धोखे में मुब्तला किया हुआ है तुम्हें, सिर्फ ये शैतान का धोखा है और कुछ भी नहीं है, कोई अल्लाह के साथ रिश्ता नहीं बना हुआ। जब अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब के साथ ये रवैया तुमने अपनाया, भाई कोई रिश्ता नहीं है अल्लाह के साथ तुम्हारा। माफी मांगोगे तब बनेगा रिश्ता, माफी मांगेंगे तब बनेगा रिश्ता। अलाहु मअल्ला कलीलम मा तज़क्करू, बहुत कम होते हैं जो के ध्यान देते हैं इन बातों के ऊपर, पे अटेंशन करते हैं इस बात के ऊपर, नसीहत पकड़ते हैं इस बात से। अम्मै यहदीकुम फी ज़ुलुमात अल-बर्र वल-बहर, कौन है जो के तुम्हें रास्ता दिखाता है खुश्की और तरी के अंधेरों में, जब रात का अंधेरा होता है, चाहे तुम जमीन में हो चाहे तुम समंदर में हो। वमै युरसिलु रियाहा बुशरम बैना यदै रहमती, और कौन है जो के हवाओं को चलाता है खुशखबरी देने वाली हवाएं, बैन यदई रहमती, उसकी रहमत के आने से पहले, यानी उसकी रहमत के आगे आगे, बारिश बाद में आती है, ठंडी हवाएं पहले आती हैं, कौन है जो कहीं ठंडी हवाएं चलाता है और उसके बाद फिर बारिश भेजता है जो कि तुम्हारे लिए रहमत का सबब बनती है, कौन है? अम्मी अब्बू हैं, अम्मी अब्बू इसलिए बोलना पड़ जाता है कि इस दौर के अंदर यही चल रहा है, बहुत कम, बहुत कम शाज और नादिर अम्मी अब्बू ऐसे होते हैं जो कि अल्लाह के हुक्म के ऊपर अपनी औलाद को चला रहे होते, वरना सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के हुक्म के ऊपर औलाद को चला रहे होते हैं, और औलाद समझती है उनको खुश करके जो है हम जन्नत कमा रहे हैं, माँ के पैर तले जन्नत है जी, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है जी। अलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद भी है? तआलल्लाहु अम्मा युश्रिकून, बहुत ऊंचा है अल्लाह ताला उन चीजों से कि जो तुम उसके साथ शरीक करते हो, अपने नफ्स को शरीक करते हो, अपने रिश्तेदारों को शरीक करते हो, अपनी फैमिलीज को, अपने अपने कॉलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, तुम अल्लाह के साथ जो शरीक करते हो ना, ये अल्लाह ताला इनसे बहुत ऊंचा है। तुमने बहुत ही घटिया किस्म की चीजों को अल्लाह के साथ शरीक करना शुरू कर दिया, बहुत ही घटिया तरीन चीजों को अल्लाह के साथ शरीक करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला तो बहुत बुलंद है। अम्मै यब्दउल खल्क़, कौन है भला जो के सिरे से बनाता है, यानी बिल्कुल जिसने इब्तिदा करी इस तखलीक की, सुम्मा युईदुहु, फिर उसको दोहराएगा, वमन यरज़ुकुकुम मिनस्समाई वल अर्द, और जो रिस्क देता है तुम्हें आसमान आसमान से और जमीन से, कौन है अल्लाह के सिवा? यानी अल्लाह ताला को ये सब कहने की जरूरत तो नहीं थी, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फितरत, अपने आप को पहचानने की फितरत दे करके हमें इस दुनिया में भेज दिया, तो अब ये दुहाइयां देना, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा रब है, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा रब है। अल्लाह को कोई जरूरत तो नहीं थी, अल्लाह ताला तो बस तुमने जो है वो अपने सिक्स्थ सेंस बोले या अपने जो है वो फितरत को क्यों नहीं फॉलो किया, और तुमने शिर्क से अपने आप को क्यों नहीं बचाया, तुमने मेरे नबियों की बात क्यों नहीं मानी, बस इतना ही काफी था और हम अजाब के काबिल हो जाते। लेकिन अरहमुर्राहिमीन, तमाम रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाले की बात देखें, कैसे कैसे अल्लाह ताला जो है ना वो हमें बुला रहे हैं, कैसे कैसे। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुम्हें तुम्हारे करीम रब से किसने धोखे में डाला हुआ है। अल्लाह ताला को क्या, अमन खलकल अर्दा वल समावाती वल अर्दा, है ना, अपने आप को यानी याद दिला रहे हैं, यार कुछ तो सोचो यार, कुछ तो अपनी अकल इस्तेमाल करो ना, ये सब किसने तुम्हारे लिए बनाया, ये सब किसने तुम्हें दिया, ये सब किसने तुम्हारे लिए किया, और तुम उसके साथ जो है वो इतनी घटिया किस्म की मखलूक को जो है वो उसके साथ तुम शरीक कर रहे हो, पार्टनर बना रहे हो उसके साथ तुम, बल्कि उसकी हुक्म की को छोड़ करके तुम इनका हुक्म मानना शुरू हो, उसकी रजा को छोड़ करके तुम इनकी रजा के पीछे अपनी जिंदगी गंवा रहे हो, लगा रहे हो अपनी जिंदगी इनकी रजा के ऊपर, जिन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, जिन्होंने तुम्हें सात आसमान तो किया, एक फटक फटी कोड़ी तुम्हारे लिए नहीं बनाई जिन्होंने तुम्हारे लिए, उनके लिए तुम जो है वो उस परवरदिगार को नाराज कर रहे हो। थिंक अबाउट इट, जरा सा सोच लो उसके बारे में, जरा सा कम अज कम अल्लाह ताला के ऊपर झूठी तोहमत लगाना तो खत्म करो ना, झूठी तोहमत लगाना तो खत्म करो ना, कि अल्लाह ताला ने कोई काम नहीं किया तुम बोलते हो ये हो गया, अल्लाह ताला ने कोई काम किया तुम कहते हो ये नहीं हुआ, यानी झूठ बोलना, झूठ बोलना ये अल्लाह ताला के ऊपर झूठी तोहमत लगाना है। उसने कोई काम नहीं किया, आप कैसे कह रहे हैं कि वो काम कर दिया उसने, ये काम हो गया, अल्लाह ताला ने तो नहीं किया था, आपने कैसे कह दिया। तो उस परवरदिगार के ऊपर झूठी तोहमत लगाने से तो कम अज कम बाज आ जाओ, कम अज कम तो सच बोलना शुरू कर दो, और कुछ नहीं कर सकते, सच तो बोलना शुरू करो ना यार। किधर भागे चले जा रहे हो, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तो कुछ नहीं है सिवाय तमाम आलमीन के लिए एक नसीहतनामा, पूरा का पूरा कुरान एक नसीहतनामा है हमारे लिए ना। अल्लाह, फिर अल्लाह ताला आपके सामने आपकी माँ आकर के जो है ना वो किसी, आप नहीं, आपके सामने तो चलो ना, आप तो बहुत अच्छे बच्चे होंगे अपने माँ बाप के ना, किसी को आप देखें कि जिसके सामने उसकी माँ आकर के इस तरीके से बोले ना, 6 मरतबा बोले, यहाँ पे कितनी दफा आया है, 6 मरतबा है इन आयात के अंदर, अल्लाह 1, 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, 5, 5 मरतबा आप किसी माँ को देखें कि वो अपने बेटे के सामने आकर के बोल रही है, क्या तुम मेरे अलावा भी तुम्हारी कोई माँ है, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारी कोई माँ है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए किया, आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप जाकर के हमारे यहाँ कहते हैं ना चमाट रख करके दें उस बेटे को, ओए तेरी माँ आकर के तुझे इस तरह से बोल रही है, अपना अपने एहसानात याद दिला रही है, और तू टस से मस नहीं हो रहा, तुझे शर्म नहीं आ रही, तेरी माँ को तेरे पास आकर के इस तरह से बोलना पड़ा है कि क्या मेरे अलावा तुम्हारी माँ भी कोई और है, क्या नहीं आपका दिल चाहेगा, ये क्या नहीं आपके जहन में ख्याल आएगी, किस किस्म का लड़का है ये, किस किस्म का बेटा है ये, कि उसकी माँ को 5 मरतबा आकर के इस तरीके से बात करनी पड़ रही है, इससे आपकी माँ को आके आपसे इस तरह से बात करनी पड़ती है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए ये किया, बेटा मैंने तुम्हारे लिए किया, बेटा मैंने तुम्हारे, मेरे अलावा की तुम्हारी और माँ हो सकती है, आपको करनी पड़, आपकी माँ को कभी आपके साथ इस तरह बात करनी पड़ती है, नहीं कोई माँ गवारा नहीं करेगी कि वो इस तरीके से आकर के अपने बेटे से ऐसे बात करे, है ना, माँ की जो है ना, माँ भी एक उसकी अना होती है, माँ की भी एक जो है ना वो एक मुकाम होता है, उसकी भी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, वो अपने बेटे के सामने ऐसे नाक नहीं रगड़ती। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखें, माँ को बनाने वाला है वो, माँ के पास जो रिस्क था ना हमारा, जिसको पी करके हम जो है वो दुनिया में आए, और जिसको पी करके हम दुनिया में जो है वो सरवाइव किया हमने, वो उसने इस माँ को दिया है, माँ की मोहब्बत कहां से आ गई? अल्लाह ने माँ को यह मोहब्बत दी ना, और जो कुछ भी था हमारे पास क्या है, सब कुछ तो अल्लाह ताला के, लेकिन अल्लाह ताला को देखें। अल्लाह ताला 5 मरतबा इन आयात के अंदर, और फिर कुरान मजीद में खाली ऐसी एक जगह को थोड़ी है, भरा पड़ा है अल्लाह ताला का कलाम इन चीजों से। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई माबूद है? मैंने तुम्हारे लिए ये किया, 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 और हमारा क्या हाल है? हम तो उस बेटे से भी गए गुजरे हुए ना, हम तो उस बेटे से भी गए गुजरे हुए, और इस अल्लाह के साथ हम ये सलूक रखते हैं कि हम, हमारे लिए अल्लाह के लिए टाइम नहीं, हमारे पास जो है वो YouTube वीडियोस के और सियासी तबसरे और न जाने क्या ऊट पटांग, और पता नहीं एक भाई पता नहीं क्लास में है कि नहीं, उन्होंने अल्फाज लिखे थे तो इस वजह से मेरे ध्यान में आ रहे, नाराज नहीं हो जाएगा भाई कि ये जो है वो क्या है, पता नहीं बफून है तो बलून है तो क्या है, फलाना सियासतदान, तो भाई ये सारे के सारे बफून है, सारे के सारे बलून है, जो भी है, हम इनकी बातों को क्यों, क्या हम तो इनकी बातों को सिर्फ इसलिए जब सुनना पड़ जाता है तो सिर्फ इस नजर से सुनते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो यही होगा तुम्हारे साथ, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, क्योंकि 1947 14 अगस्त से लेकर के हम आज तक करते आ रहे हैं, तो फिर और व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? इस अल्लाह की नाफरमानी, ये कुरान 14 अगस्त को तो नहीं नाजिल हुआ था ना, 1947 के बाद तो ये कुरान नाजिल नहीं हुआ है ना, ये कुरान तो 14 साल पहले नाजिल हुआ है ना, ठीक है। तो अल्लाह ताला इस तरीके से हमें आज से 200 साल पहले भी अल्लाह ताला का ये कुरान हमारे पास मौजूद था, अल्लाह ताला की ये दुहाइयां जिनको हम अपनी जुबान में दुहाइयां कह सकते हैं ना, ये दुहाइयां अल्लाह के हमारे पास 200 साल पहले भी मौजूद थी, 100 साल पहले भी मौजूद थी, और आज से 75 साल पहले भी मौजूद थी, लेकिन हमने उस अल्लाह को छोड़ करके कहां अपने अलाइनमेंट्स बनाई हुई हैं, कहां से जो है वो हम अपना लीगल सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, कहां से हम अपना जो है वो एजुकेशनल सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, कहां से हम अपना मेडिकल सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, ये अस्पतालों का निजाम ये कहां से लेकर के आ रहे हैं, अल्लाह के दोस्तों से लेकर के आ रहे हैं ये सिस्टम, जिनके अंदर ना हया का लिहाज, ना जो है वो झूठ का लिहाज, ना सच का लिहाज, किसी चीज का लिहाज नहीं। कुल हातु बुरहानकुम, कह दीजिए कि ले आओ तुम अपनी कोई सनद, कोई तुम्हारे पास दलील है, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो, अगर तुम जो कर रहे हो ना, अगर तुम वाकई, if you really believe that what you are doing is right, bring something as a proof for it, kuch daleel lekar ke aao uske, inshallah agli class ke andar hum class se tafseel karna shuru karenge, wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.